नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार आतंकवाद सहित उसके सभी प्रारूपों की निंदा की। द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत ने वर्ष 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान के कराची में भीषण आग में 26 लोगों की मृत्यु और 81 लापता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शहर नवा इलाके में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत। और खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की और साथ ही सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी प्रारूपों की निंदा की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर बुनियादी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 100 मिलियन डॉलर को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कल पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाफ शिरकोस्की के साथ नई दिल्ली में बैठक की। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने स्विट्जरलैंड में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करने पर चर्चा हुई। उन्होंने अमेरिका से ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया। भारत ने 2025 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि देश में लगभग 30 अरब डॉलर तक स्मार्टफोन के निर्यात से प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर 7.37% कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा कि यह वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% का अनुमान व्यक्त किया है। IMF ने कहा है कि अपेक्षित मंदी के बावजूद भारत उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि का एक प्रमुख चालक बना हुआ है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ओमान के उप प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार डॉक्टर सईद मोहम्मद अहमद अल साकरी से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि चर्चा सौर पैनल, इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन के निर्माण और निर्यात के अवसरों पर संयुक्त सहयोग पर केंद्रित रही। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कल दाओस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के पहले दिन रिकॉर्ड 14.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र विदेशी निवेश के लिए भारत का प्रवेश द्वार बनकर उभरा है और ये विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में बड़े निवेश को आकर्षित कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सम्मेलन के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने गैर निवासी तेलुगु भाषी उद्यमियों को सहयोग देने के लिए 50 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
इस बीच ईरान में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन और कार्रवाई के कारण स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का निमंत्रण रद्द कर दिया गया है। जर्मनी में आयोजित होने वाले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से भी ईरान के अधिकारियों का निमंत्रण वापस ले लिया गया है। ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने प्रदर्शनों में कई हजार लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। खामनेई ने इसके लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार प्रदर्शनों में 4,029 लोग मारे गए और 26,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान में कराची के एमए जिन्ना रोड स्थित गुल प्लाजा में भीषण आग लगने से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 81 लोग अभी भी लापता हैं। 17 जनवरी को देर रात लगी ये आग लगभग 34 घंटे बाद काबू में आई, लेकिन बचाव अभियान अब भी जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शहर नाव क्षेत्र में एक रेस्तरां में हुए विस्फोट में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है तथा कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक चीनी नागरिक भी शामिल है। आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रेस्तरां अफगानिस्तान और चीन के नागरिकों द्वारा साझा रूप से चलाया जा रहा था। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में करीब 40 लोगों की मौत तथा कम से कम 73 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेल नेटवर्क ऑपरेटर के अनुसार यह घटना दक्षिणी हिस्से के एडम्यूज शहर के पास हुई। इस दुर्घटना के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अधिकारियों ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का 6ठा संस्करण आज से लद्दाख के लेह में शुरू होगा। इसमें देशभर से लगभग 1,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें 472 खिलाड़ी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार खेलों का मुख्य आकर्षण आइस हॉकी और स्केटिंग की स्पर्धाएं होंगी।
खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का उद्घाटन समारोह आज लेह के NDS आइस हॉकी रिंग में होगा। खेलों में मौजूदा स्पीड स्केटिंग और शॉर्ट ट्रैकिंग स्केटिंग के अलावा इस बार फिगर स्केटिंग को भी ओलंपिक खेलों के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के इन खेलों का आयोजन वर्ष 2020 से खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। लद्दाख अब तक इन खेलों की मेजबानी करता आ रहा है। आइस हॉकी प्रतियोगिताएं NDS आइस हॉकी स्टेडियम और फ्योंग में लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के आइस हॉकी रिंग में आयोजित की जाएंगी, जबकि आइस स्केटिंग प्रतियोगिताएं गुफक फ्रोजन पॉन्ड में खेली जाएंगी। समापन समारोह 26 जनवरी को होगा। लद्दाख से यांगचन डॉलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
नीदरलैंड्स में खेली जा रही टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त अर्जुन एरिगेसी और विश्व चैंपियन डी कुकेश के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके मैथियास ग्लूबाउम ने अपने हमवतन विंसेंट कीमर को हराकर इस टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। वे 3 में से 2 अंक हासिल करके शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए। साल के पहले सुपर टूर्नामेंट में अभी 10 राउंड बाकी हैं और अर्जुन अब्दु सत्तरोव और हैंस नीमन के साथ ब्लूबाउम भी 3 में से 2 अंक के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें कई उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति की एक अनुपम झलक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परेड को देखने के लिए करीब 10,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें नवाचारक, स्टार्टअप से जुड़े युवा, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले लोग भी शामिल हैं। इसके साथ ही आय और रोजगार सृजन में अहम योगदान देने वाले लोगों को भी इस परेड में शामिल होने का अवसर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि इन लोगों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उनके योगदान का सम्मान करना और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जनभागीदारी को और मजबूत करना है। सौम्य शरण के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। सरकारी पदों पर आसीन कई राजनेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफे दे दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार आतंकवाद सहित उसके सभी प्रारूपों की निंदा की। द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक दोगुना कर $200 अरब तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की गई। भारत ने 2000 25 में 47 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान के कराची में भीषण आग में 26 लोगों की मृत्यु और 81 लापता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शहर नवा इलाके में विस्फोट से 7 लोगों की मौत। और खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।